जो है खुशियतों में से वो खुशियत है कि आपकी उम्मत का एजाज, आपकी उम्मत का इकराम अल्लाह के वहां बहुत से अदा करें और इस नियमत में हम सब बराबर, हम सब का इसमें शुमार है और सबके पास इसका चांस है। इसके लिए आदमी को मालदार बनने की जरूरत है, इससे कोई अनपढ़ है तो उसको पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, क्वालिफाइड हो जाएगा तब जाके कर सकते। कोई कम नसब नसब वाला है तो उसको अपना नसब नसब ऊंचा करने की जरूरत है, कोई काला है तो उसको गोरा होने की जरूरत है, कोई बदसूरत है तो उसको स्मार्ट होने की जरूरत है और खूबसूरत बतकल्लुम खूबसूरत बनने की जरूरत है। वो जैसा है इस हाल में अल्लाह ताला ने जिंदगी और वक्त का सरमाया ऐसा दिया है तो उसको सही इस्तेमाल कर ले। उन्होंने अपने वक्त को सही इस्तेमाल कर दिया तो अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया। जब हुजरा रजी अल्लाह अन्हु मामूली हैसियत के आदमी थे, फकीर आदमी थे और गुलामी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को वसूल कर लिया तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मुकाम दिया। ऐसे और बहुत सारे लोग सहाबा के बाद ताबीईन में बहुत सारे ऐसे ताबीईन हुए जिनकी जाहिरी ऐसे अच्छी थी, नसब व नसब बहुत ऊंचा नहीं था, माली हालत बहुत कमजोर थी, तो वह खाना पूरा नहीं मिलता, गुलामी की जिंदगियां गुजारी, अपने आकाओं की मार खाई हुई, तंजीरों में जकड़े रहे, जिंदगी का एक हिस्सा तंजीरों में गुजर गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को वसूल किया, उसको सही जगह लगा लिया। अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत दोनों जहान में उनको इज्जत बख्शी, दोनों जहान में इज्जत बख्शी। ये बहुत कीमती सरमाया है और इस उम्मत में हमारी पैदाइश, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में हमारा वजूद, ये हमारे लिए बहुत बड़े फखर की स्थिति, बहुत बड़े फखर और बहुत बड़े शुक्र की चीज है जिस पर हम हर वक्त शुक्र करते हैं। दुनियावी एतबार से किसी को कोई मकाम को मरतबा मिला तो अपने उस मकाम और मरतबे का इजहार करता है खुश होकर, मामूली हैसियत नहीं हमारी हम अल्लाह के बंदे हैं, इससे बड़ी क्या हैसियत होगी। हम अल्लाह के बंदे हैं जो सबसे बड़ी जात है, उसके साथ हमें बंदे बंदा होने की निस्बत मैसर है, हम उसके बंदे हैं और अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी जात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें उम्मती होने की निस्बत है। हम आपको उम्मती हैं, दुनिया में लोग अपने हसब नसब पर फख्र करते हैं, अपनी तालीमी लियाकत पर और अपनी डिग्री पर और अपने पास मिले हुए कोई सर्टिफिकेट है तो उस पर लोग फख्र करते हैं, फख्र से कहते हैं, घर के दरवाजे पर लिखते हैं कि मैंने एम कॉम किया है, बी कॉम किया है, एम बी बी एस, एम डी, एम एस, ये सारी फानी डिग्रियां हैं, सब खत्म हो जा रहे हैं। जितने औहदे हैं, जितनी डिग्रियां हैं, जितनी लियाकतें हैं, कितनी बड़ी लियाकत का आदमी मौत आएगी उसकी सारी लियाकत खत्म हो जाएगी, उसकी सारी काबिलियत मिट्टी में बन जाएगी, वो खुश नहीं रहेगा, सारी काबिलियत खत्म, सारा खानदानी नसब नसब का जो ज़ौम और गुरूर है सब खत्म हो जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को नसीहत करके पूरी उम्मत को तालीम दी और अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि फातिमा कब्र में नसब नसब नहीं चलेगा, वहां तो अमल देखा जाएगा, अमल कैसा है। पूरी उम्र को तालीम दी कि जितने सारे दुनियावी लियाकत और तालीमी के सर्टिफिकेट आदमी के साथ लगा है वो आदमी के लिए दुनियावी मनफात की चीज जरूर है, उससे आदमी फायदा उठा रहे और उस मनफात से फायदा उठाकर अपने दीन, अपने ईमान को, अपने आखिरत को अच्छा करके सवाब, ये इसलिए कि दुनिया की चीज हर चीज आखिरत के लिए, दुनिया में जो भी आदमी को मिला है, जिंदगी, जान, मान, जज्बात, सलाहियत, आवड़त, जो कुछ भी मिला है वो आखिरत के फायदे के लिए मिला है। दुनिया को लेकर रखो उन्हें तुम दिला करा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो हमारे लिए, हम उससे फायदा उठाए। अगर आदमी को इन चीजों में से कोई चीज मयसर है, हासिल है, तो उसके लिए ऐब की चीज नहीं। अगर उसको सही जगह इस्तेमाल कर ले तो वो चीज उसके लिए खैर की चीज। लेकिन आदमी उस पर भरोसा करके जिंदगी गुजारता रहे और अपनी आखिरत को भुला दे और अपनी जिंदगी के कीमती अय्याम को उसके पीछे जाया करते हैं, उन चीजों के उसूल के खातिर उसी के लालच में जिंदगी पूरी करते हैं, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आज इस अतबा नफ्स को हवा तो तमन्ना अल्लाह के नाम, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ये चीजें तो फायदा उठाने के लिए, जिंदगी फायदा उठाने के लिए, जवानी फायदा उठाने के लिए, माल पैसा है तो फायदा उठाने के लिए, कोई सलाहियत काबिलियत कोई आवड़त है तो उस आवड़त से फायदा उठाना, असम नसब का कोई रिश्ता किसी से अच्छा है इसकी वजह से कोई काम निकल सकता है, उससे दुनिया नहीं बनानी। उससे मुसलमान जो है उसमें और दुनिया में और जो गैर ईमान वाले उन दोनों का फर्क ही है कि मुसलमान अपनी हर काबिलियत, अपनी हर सलाहियत, अपनी हर इस्तेदाद और अपने हर सरमाए से अपनी आखिरत बनाए, अपनी हर ताकत से आखिरत बनाए। जिसम की ताकत है तो आखिरत के लिए इस्तेमाल हो, माल अल्लाह ने दिया है तो माल खर्च करके आखिरत बनाए, काबिलियत आवरत सलाहियत है तो उस सलाहियत से आखिरत बनाए। असर और रसूख अल्लाह ने दिया लोगों के दरमियान में, उस असर रसूख को इस्तेमाल करके आखिरत बनाए और दुनियादार अपनी उन तमाम सलाहियतों से दुनिया बनाए। अल्लाह ने माल दिया तो माल से माल जमा करे, खर्च नहीं करेगा उसे, खर्च औरत अल्लाह ने जिसम में ताकत दी तो दुनिया बनाने के खातिर वो रात दिन एक कर देगा, रात दिन एक करेगा अपनी दुनिया बनाने के खातिर। असर वसूख अल्लाह ने लोगों में दिया तो उस असर वसूख का इस्तेमाल करके अपने दुनियावी मफाद पूरे करेगा, दुनियावी मकासिद करेगा, अपने नाम से, अपने असर से, अपनी कुर्सी से, अपनी कलम से, किसी के साथ खुसूसी तालुक है उस तालुक से वो अपनी दुनिया बनाएगा। इस और ईमान वाला चूंकि अकलमंद हल्कई इस उसको अकलमंद कहा, उसके पास समझ है, औरत है, तो ये अपनी तमाम तर ताकतों को लगाकर अपनी आखिरत को जमा संभालेगा, अपना ईमान बनाकर, अमल बनाकर, अखलाक बनाकर, आमाल बनाकर अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाएगा उसका, और ऐसे असबाब में मशगूल होगा जिन असबाब से अल्लाह का ताल्लुक बढ़ जाता है, और ऐसे असबाब में मशगूल हो जाएगा जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बढ़ जाता है, और ऐसे कामों में अपने आप को लगा देगा जिन कामों से अल्लाह और अल्लाह का रसूल बढ़ जाता है। अपनी तमाम ताकतों का आदमी इस्तेमाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिस जमात का इंतखाब हुआ अल्लाह की तरफ से, वो सहाबा की मुबारक जमात जो इस उम्मत के लिए आमली नमूना है। सबसे पहला नमूना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादी गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया और खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन बनाकर कयामत तक आने वाले इंसानों का उस्वा बनाया, कयामत तक आने वालों के लिए उस्वा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद, और आपके साथ एक अमली जिंदगी गुजारने वाली जमात सहाबा की जमात है, उनको फिर आपके बाद उस्वा बनाया कि कयामत तक आने वाले अब अपनी जिंदगी का रुख इनको देख कर दिया करते हैं। गाइडलाइन यही यही रहकर होते हैं, चलने में, उठने में, बैठने में, सोने में, कमाने में, खाने में, عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، زندگی کے سارے شعبوں میں رہبری نہیں سکتی، اور وہی رہبری اصل ہے، وہی رہبری اصل ہے. اس کے علاوہ جتنی رہبری اتنے اس کے علاوہ جتنی رہبری وہ سب ناقص اور ادھوری. ٹھیک ہے، جزوی طور پر اس رہبری کا کوئی عکس کسی کے پاس ہو سکتا ہے. اس میں خیر بدائی کی بات ہے، اس دنیا میں بہت سے لوگ اخلاق کی، معاشرت کی اچھی بات کرتے ہیں، سیاست کی اچھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتا، نمونہ نہیں ہو سکتا. امت کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد صحابہ کی مبارک جماعت ہے جن کا انتخاب کیا اللہ نے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت و خدمت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے. ایک جماعت ہے صحابہ جن کا ہر ہر فرد نمونہ. حکایت صحابہ جو لکھی گئی، حکایت صحابہ، اس میں صحابہ کے ایمان، نماز، ان کا علم، ان کا ذکر، ان کا تقویٰ، ان کا زہد، ان کا جہد، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، ان کا صبر، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی، اور ان کی آنکھوں کی عبادت، حکایت صحابہ میں بھی. پھر فضائل نماز میں ان کی نماز اور ان کے مجاہدوں کے واقعات حصے، اور دیگر سارے کتب میں جتنی بھی فضائی کی کتابیں، ان سب میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور صحابہ کے آثار اور ان کی عملی زندگی کے نمونے پیش کیے، ان کی عملی زندگی کے نمونے جس میں سے ہمیں روشنی حاصل کرنی، اپنی زندگی کے لیے ان کو اسوہ بنا کر اور زندگی کے ایام کو وصول کرنا، کہ ہم زندگی کو وصول کریں. جیسے کوئی آدمی کاروبار میں لگ کر کاروبار کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کاروبار سے لاکھوں روپے کی منفعت حاصل کرتا ہے، کھیتی میں لگ کر کھیتی کا ہو جاتا ہے، زمین سے آدمی کروڑوں روپے کی اپج کرتا ہے، ملازمت میں لگ کر آدمی ملازمت کرتا ہے 60 سال کی عمر تک اور لاکھوں روپے وہاں سے وصول کرتا ہے قسم کی محنت کے ذریعے سے. ایسے ہی یہ مبارک زندگی ہے کھلی کتاب کی طرح، اس کو زندگی میں داخل کر کے اس سے ہمیں اپج کرنی، اس کے بڑے منافع ہیں، یہ زندگی کے بڑے فائدے ہیں جس کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، سوچ نہیں سکتے. اتنے فائدے ہم نے دنیا پر محنت کرتے کرتے دنیا سے اٹھانے کا سوچا ہے، وہ تو ہم نے بہت تھوڑا سوچا ہے. ہم نے جو سوچا ہے دنیا پر محنت کر کے، جو ہمارے عزائم ہیں، ہم میں سے اگر دنیا کے عزائم بھی پوچھے کسی کو کیا آسان ہے تو ہمارے تو بہت تھوڑے ہیں، دنیا میں بھی ہم نے تو زیادہ یاد نہیں. غریب سے پوچھے بھائی 56 کروڑ کی چوتھائی تو راضی ہو، ہم لوگ تو کہ بھائی روڈ دال میں 5-10 لاکھ کی بھیجا دے دو نا کروڑ، کہ کیا آسان ہے، کیا ارادہ ہے، کچھ بھی نہیں. پوری دنیا کا مالک بننے کا تو کسی کا بھی ارادہ نہیں. اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کا کمال آدمی حاصل کرتا ہے، لمبی روایت کا مفہوم ہے، آخری حصہ روایت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخری درجے کے ایمان والے کو جہنم سے نکلوائے گا فرشتوں کے ذریعے سے، وہ ایمان والا ہوگا جس کے پاس رائے کے دانے کے برابر ایمان، رائے کے دانے کے برابر، اور اس کو جہنم سے نکلوا کر اس کے اس ایمان کی وجہ سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. وہ جنت اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوئی جو آخری جنتی کو مل رہا ہے، اور وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا، سیدھا سیدھا نہیں گیا ہے. اس آخری کو جو ملنے والے ہیں وہ اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اتنا بڑا کیپیٹل ہمارے پاس. اس کیپیٹل کو اگر ہم یہاں کم اور کرتے ہیں ایمان کو، اور اس ایمان کے جو مطالبے اور تقاضے ہیں دنیا میں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو کیا دے گا، ان کے بارے میں حدیث پاک پورا اسلام نے فرمایا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، یہ کسی کان نے سنا نہیں اور کسی آنکھ نے وہ نظارہ دیکھا نہیں اور کسی دل پر اس کا واہمہ بھی نہیں ہوا تو ان کو کیا ملنے والا ہے؟ اتنا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے، زندگی ہے اور اس زندگی کے ساتھ ایمان ہے، اس ایمان کی حالت میں ایک سبحان اللہ کا اجر یہ ہے کہ سبحان اللہ تم لوگوں کے ساتھ، تو اگر زندگی بھر آدمی نے اللہ کی یاد میں اور نیک اعمال میں اپنی زندگی گزاری ہے تو کتنا بڑا اجر ہے، وہ کیسے نفع اٹھائے گا تصور نہیں کر سکتے، اس کے پاس کیا خوشیاں ہوگی، اس خوشیوں کو کوئی یہاں کوئی سوچ نہیں سکتا، اس لیے ایمان والوں کے لیے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہی لڈو ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو، اگر اس کے حالات سازگار ہیں فراوانی کے ساتھ ہیں شکر گزار بن جائے، نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، جتنی نعمتیں اللہ کی اس کو آدمی تصور کرے، روزانہ سوچیں، یاد کریں اللہ کی نعمتوں روزانہ، ابھی ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں، اس ماحول میں نعمتوں کا تذکرہ کم، اس لیے شکر کی کیفیت کم بنتی، جو نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ بہت کم، اس لیے شکر کی کیفیت کم، اس ماحول میں جو نعمتیں نہیں ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کم، اس لیے ناشکری، ہم میں سے ہر ایک سوچے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، زندگی میں جوانی میں، ایک آدمی کے پاس چار آنا بھی پراپرٹی نہیں ہے، چار آنا بھی لیکن تندرستی ہے وہ بڑا کروڑپتی ہے، تندرست ہے ایک کروڑپتی آدمی بیمار ہے تو اس کے لمبے دوا میں جا رہے ہیں، اس کو تو اللہ کا بدل ہے، ہر مہینے اس کی 5 لاکھ دوا میں جا رہے ہیں، 4 لاکھ جا رہے ہیں، 2 لاکھ جا رہے ہیں، 1 لاکھ جا رہے ہیں، 50,000 جا رہے ہیں، 25,000 جا رہے ہیں دوائی میں، تو یہ تو 25,000 کی اس کی تو روکڑی کیا وقت ہے، اتنے خرچہ نہیں یہ آوک نہیں، تو ایک آدمی کے پاس خرچہ نہیں وہ بھی تو آوک کی آوک ہے، ایک آدمی آوک کے ساتھ خرچہ ہے، اگر آدمی سوچا ہی کیا مطلب کہ تندرست سے اللہ نے اتنی بڑی ہے جوانی اللہ نے اتنی بڑی ہے شور اور گوش کیا ہے اتنی بڑی ہے اولاد اللہ نے دی اتنی بڑی ہے ان کے پاس نہیں ہے انہیں جا کر پوچھا اولاد نہیں اور یہاں آسانی کے ساتھ سہولت سے اللہ اولاد دے رہا 2, 4, 5, 7, 10 یہ اللہ کی نعمت ہے بہت سہولت کے ساتھ ولادت ہو رہی سہولت کے ساتھ اولاد ہو رہی معمولی چیز نہیں آدمی ایک بچے کے لیے ترس جاتا زندگی اس کی پوری لگ جاتی اس کے پیچھے ایک بچہ نہیں اس کی زندگی لگ جاتی اور مایوس رہتا ہے زندگی کو اولاد یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ ان نعمتوں میں شکر گزار ان نعمتوں میں آپ شکر گزار کبھی دکھی نہیں ہوگی اور جو کچھ اللہ کی طرف سے مسائل ملے وہ تو بہت تھوڑے مسائل بہت تھوڑے بلکہ یہ تو مسائل ایسے ہیں کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی وزن اٹھایا ہی نہیں اب اس کے اوپر 5 کلو اٹھانے کا آیا ہے جس کو بوجھ پڑ رہا اس پر 5 کلو آیا حالانکہ 5 کلو کیا 10 کلو بھی کیا پیسے دے لیکن کبھی اٹھایا نہیں اس نے بارے اندر تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ ایسے کہ زندگی میں کبھی مصیبت اٹھائی نہیں حالانکہ مصیبت تھی جو دور صحابہ کے واقعات ہیں دو دو دن گزر جاتے تھے اور کھانا نہیں مل جاتا تین وقت کھاتا ہو جاتا تھا تین دن کھاتا ہو جاتا تھا عموماً ہو جاتا تھا گھروں میں ساز و سامان نہیں ہوتا تو ان حالات میں وہ ان حالات میں بھی اتنے شکر گزار ہیں کہ ان حالات میں بھی وہ 5 وقت کے نمازی نماز ضائع نہیں کرتا تھا حید ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی مسجد میں نمازیوں کی پوری سب گر جاتی تھی نماز پڑھنے اور یہ سب گرنے کی وجہ سوائے بھوک کے اور کوئی نہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے کھڑا ہی آ جاتا पूरी सब के तो कैसा पापा हुआ, कैसा पापा हुआ। और मशहूर किस्सा है वो हुजूर अलैहि सलातो वसलाम तो बाहर के वक्त अपने घर से निकले, है तो अबकर उसकी तरफ से आए, है तो अमर आ गए, जमा हो गए, क्या हुआ। तो तीनों का एक ही मकसद था कि बहुत सख्त हो तो बाहर की शिद्दत पर निकले और फिर तीनों मिलकर गए अंसारी सहाबी के वहां। ये जो पूरा तफसील किस्सा है वो पूरी इतनी शिद्दत की भूख है कि घर से निकले तो बाहर के वक्त, लेकिन इस हाल में भी कम खाना मिला। उस खाने के बाद हुजूर अलैहि सलातो वसलाम ने दुआ कौन सी पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी हुवा अशबाना व अरबाना व अनअमा अलैना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कह रहे हैं कि शिद्दत की भूख के बाद या रसूल अल्लाह खाना मिला, तो हुजूर अलैहि सलातो वसलाम ने क्या फरमाया, तो उमर क्या ठंडा पानी नहीं पीते, अहमद नहीं हो, ठंडा पानी कितनी बड़ी नहमत, मीठा पानी कितनी बड़ी नहमत, मीठा पानी मिल रहा, ठंडा पानी मिल रहा, धूप में छाव मिल जाती कहीं ना कहीं, अल्लाह की कितनी बड़ी नहमत, किसी धूप में छाव मिली, पेट भरने के लिए दो लोग तो मिल गए वक्त पर, इतनी बड़ी नहमत। इसीलिए रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद दुआ सिखलाई कि खाना खाकर आके अल्लाह की तारीफ करें, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए किसने मुझे खिलाया, मेरे बाजुओं में कोई ताकत नहीं कि मैं खाना खा सकूं, मेरी कमाई में ताकत नहीं कि मैं खाना खा सकूं, अल्लाह ने खिलाया कि नजर उसी की तरफ जाए और याद उसी की करे। ये जबान इसीलिए है कि इससे अल्लाह ही की तारीफ की जाए, तारीफ उसी की जाए, तारीफ के काबिल सिर्फ एक जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सकौना वो जानना मुस्लिमी, तमाम तारीफ और सलमान के लिए उसने खिलाया और पिलाया और उसी अल्लाह ने मुसलमान बनाया। ये तारीफ के काबिल नहीं होता, उसी की बड़ाई होने जा रही जमीन पर, जबान से उसी को याद किया गया तो ये वक्त कीमती बन जाए, उसके ताल्लुक के बढ़ने का जरिया बन जाए, और जो कलिमात उसके तारीफ में उसके शुक्र में उसके जिक्र में अदा होंगे वो हमारे लिए अजर बन जाए, सवाब और अजर बन जाए, और बड़ी कमाई हो रही है, बहुत बड़ी कमाई हो रही है। वो तो जब इसका अजर कयामत में मिलेगा, हदीस पाक को फजाइल जिक्र में रशीद अहमदुल्लाह ने हदीस नकल की है कि अहले जन्नत जन्नत में जाने के बाद अपनी दुनिया की उन घड़ियों पर पछताएंगे जो घड़िया अल्लाह की याद के बगैर गुजारी, उस पर पछतावा होगा। उस अल्लाह की याद के साथ उसके शुक्र के साथ उसका बड़ा एहसान, फकीर से फकीर आदमी के ऊपर भी अल्लाह के करोड़ों ईमान, वो फकीर नहीं है, उस पर करोड़ों ईमान करोड़ों एहसान तले दबा हुआ है। जिस हालत में बंदा है उस हाल का शुक्र गुजार, ये अल्लाह की तरफ करता था शुक्र करता है, इसलिए शुक्र से नेमतों में इजाफा होता रहता है और दिल मुतमईन रहता है। शाकिर आदमी का दिल मुतमईन रहेगा, खाना दो रुपये मिलने पर कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी रोजी रोटी आदमी के पास नहीं है जैसे भाई कैसा है अल्लाह का एहसान, उसका दिल मुतमईन रहे, दिल के इत्मीनान का सबब है शुक्र और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद जो कुलूब की तमानीनत का जरिया है कि बंदा अल्लाह की याद करे, उसको याद करता रहे, उसी की तारीफ करे, खाते हुए अल्लाह का नाम लेता, सोते हुए आदमी अल्लाह का नाम ले रहा है, होकर उठ रहा है तो अल्लाह के नाम के साथ उठ रहा है, तो हशाश हशाश होंगे, खुशहाल होने का चाहे सुबह की चाय नहीं उसके पास, लेकिन उठ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना बादमा हदाना व इलैहि नुशूर, अल्लाह की याद के साथ उठ रहा है, उसकी हमद के साथ, उसकी तारीफ के कलिमात के साथ अल्लाह दिल को मुतमईन कर देगा। परेशानी नहीं, डिप्रेशन में कभी नहीं आए। ये ताकत है ईमान की और अमल की। और जब इस ईमान अमल के साथ आपकी जिंदगी गुजारेगा तो इंसानी तबीयत का जो दायरा है दुनिया में, हर इंसान इज्जत चाहता है, लोगों से मोहब्बत चाहता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला उसके ईमान अमल की वजह से ये देते हैं। इन्नल लदीना वामिलुस सालिहात सयजअलुहुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह ईमान और अमल की वजह से लोगों के दिल में मोहब्बत डालते हैं। शुक्रगुजार है, ईमानदार है, अल्लाह के अवामिर पर है तो लोग मोहब्बत करेंगे उससे, चाहे गरीब आदमी है। बहुत से लोग हैं फकीर हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं दुनिया में, दुनिया में एतबार से हैसियत नहीं, लेकिन लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको सलाम करते हैं। ये उनके ईमान और अमल की वजह से आसमानों से उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह डाल देता है। अल्लाह ताला मोहब्बतें डालेगा और असबाब में बरकत डाल देगा। कमाई उनकी थोड़ी है, 200-250 की आवक रोजाना है, लेकिन वो 200-250 में सुकून से जी रहा है। ईमान और अमल का ये फायदा है कि अल्लाह असबाब में बरकत डाल देगा, थोड़ी आमद पर थोड़ी कमाई पर गुजारा हो जाएगा। जो काम लाखों में होते हैं वो हजारों में हो जाएगा, बल्कि जो काम माल से होते हैं अल्लाह बगैर माल के उनके काम पर आते, बगैर माल के काम पर आते। और बहुत से मौकों पर अल्लाह ताला बगैर माल के भी नहीं, बगैर चीजों के अल्लाह काम पर आते। बगैर माल के चीजें तो मिल सकती है एक दर्जा, लेकिन एक दर्जा वो होगा कि बगैर असबाब के, बगैर चीजों के अल्लाह काम बनाएगा। बीमारी हुई सिर्फ दो रकात से मसला होगा, शिफा मिल गई, दवाई की जरूरत नहीं। बीमारी है इलाज सुन्नत है, या इलाज कराया तरीका बताया, लेकिन उसके साथ अल्लाह पर नजर करके इलाज कर। लेकिन जब अल्लाह से ताल्लुक बनेगा ईमान और अमल के रास्ते से, फिर अल्लाह ताला बगैर चीजों के काम बना देगा। लाखों रुपए की दवाई में जो काम होता था वो चार आठाने की दवाई से हो जाएगी, या उसकी भी जरूरत ना, उसकी भी जरूरत ना पड़े। बहुत सारे ऐसे बीमार मरीज आज के जमाने में मिलते हैं, आज के जमाने में बड़ी बड़ी बीमारियों में मुबतला, लेकिन कोई ऐसा ईमान और अमल के रास्ते से ऐसी सबील निकल आई कि अल्लाह ताला ने सेहत याब कर दिया। दुआ से, सदके से, अल्लाह के ताल्लुक से, ये ईमान और अमल के फायदे, बेइंतहा फायदे, नफे ही नफे। यहाँ इस रास्ते में खोट नहीं, कोई खोट नहीं, फायदा ही फायदा है। रोजाना आदमी नफा उठाता जा रहा है, अपनी दुनिया बनाता जा रहा, अपने दिल को सुकून पहुंचाता जा रहा, मुफ्त की इज्जत लेता जा रहा और इज्जत में इजाफा ही करता जा रहा है रोजाना। हदीस पाक में आया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम सातवे आसमान पर ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी करता हूँ। सारे फरिश्तों में ऐलान होता है कि तुम भी मोहब्बत करो। फिर वो ऐलान छठे, पाँचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले पर हो जाता है और फिर वो मोहब्बत आसमानों से जमीन पर आती है और फिर अल्लाह ताला उस मोहब्बत को आम कर देता है, यहाँ तक कि उस बंदे की मोहब्बत पर वो बाहर पर रहने वालों के दिल में डाल दी जाती है और यूं जावर हम कबूल, उसके लिए कबूलियत का दरवाजा खुल जाता है। फिर सारे लोग मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि दुनिया का जो निजाम है, तकवीरी निजाम, वो भी उसकी फेवर में हो जाता है, उसकी फेवर में हो जाता है। रहने के जानवर भी उसका नुकसान नहीं देते और जंगल के जानवर भी उसको फायदा पहुंचाते हैं और सर्दी गर्मी और मौसम भी उसके फेवर में होता है कि ऊपर अल्लाह से ताल्लुक बनाकर अल्लाह की तरफ से खास खुसूसी फेवर हासिल कर पाए। जो रास्ता बहुत आसान है, ईमान अमल का रास्ता है, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान रास्ता है। इसके लिए कोई बड़ी झंझट नहीं, बड़ी मशक्कत नहीं है। जितनी मशक्कत आज के जमाने में दुनिया में लोग दुनिया हासिल करने के लिए करते हैं, अगर उससे आधी मशक्कत इसके लिए उठा लें तो दुनिया भी आसान हो जाए और ऐसी मोहब्बत और मुवद्दत अल्लाह की तरफ से आसान हो जाए। उसकी आधी मेहनत कर रहा है, बाकी नहीं तो दुनिया माफ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये सीधा रास्ता अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए से दिया है, सहाबा ने यह रास्ता किया है, तो बहुत थोड़ी मुद्दत में वो अपने मंजिल को पहुंच गए, बहुत थोड़ी मुद्दत, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे यकीन कर लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल दिया, फौरन यकीन करके पीछे पीछे चल, वो इधर उधर नहीं, ज्यादा ज्यादा अपने नफ्स के बदले नहीं बने, बल्कि सीधे सीधे हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल लिए, तो सीधा रास्ता उनको मिल गया सिराते मुस्तकीम। तो दुनिया में कम झंझटें उठानी पड़ती, मशक्कत का एक दौर होता है, मशक्कत का एक दौर होता है जो दुनिया पर मेहनत करने वालों के लिए भी होता है। आपकी सियासत में आता है, सियासत के मैदान तो वैसे ही वजीर बन जाता है, वैसे ही वजीर बन जाता है, बड़े पापड़ मिलता है वो, और तालीमी मैदान में आपके होता है तो वैसे ही डॉक्टर बन जाता है, वैसे ही इंजीनियर बन जाता है, लंबा मुजाहदा होता है उसका, एक लंबी मेहनत होती है, अपने आप को वक्फ कर देता है, अपने आप को वक्फ कर देता है, तय कर देता है, जितने लोग गालियां दे गालियां खाए, मार खाए मार है तो मार खाए, जलील करे तो जलील हो, लेकिन कुर्सी पर बैठने का तय करके बैठते हैं, नाक कटा के रख देते हैं, नाक कटा के आगे की तरफ कर देते और फिर अपना सफर शुरू करते हैं, तो लोग गालियां दें, तारीफ करें, वाह-वाह करें या कुछ भी करें, वो अपना काम करते हैं, उनका एक हदफ है, एक टारगेट। ऐसे दुनिया के दुनिया के मैदानों में मेहनत करने वाले वो अपने काम में वक्फ हो जाते हैं, और एक मुद्दत के मुजाहदे के बाद उनकी मुकद्दर में जितनी होती है, उनकी जितनी होती है, अगर वो सीधे रास्ते से लेते हैं तो इज्जत से लेता है और हलाल देता है, और अगर रास्ता उल्टा इख्तियार करते हैं तो जलील होकर लेता है और हराम भी लेता है। लेकिन जो रास्ता हुजूर अलैहिस्सलाम ने बतलाया है वो सीधा रास्ता है, इज्जत का रास्ता है, वो ईमान अमल का रास्ता है, आदमी ईमान बनाए, अमल बनाए, अपना ईमान पुख्ता करे, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करे, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ा, और अपना अमल ठीक करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना उस्वा बना, उससे अमल ठीक हो जाएगा अपने आप। एक फर्रे में चीज आ गई तो अच्छी नहीं थी, क्योंकि फर्रा अच्छा कंपनी है, कंपनी अपनी अपनी चीज को अच्छी और एक तरह की बनाने के लिए फर्मा बना दी, अब जो चीज उस फर्रे से आकर बाहर आएगी तो सही प्रोडक्ट होगा, अच्छी नहीं थी। ऐसे हमारे जिंदगी के तमाम कामों का फरमा अल्लाह ने बयान कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अगर हमारा जो भी काम है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम वाली जिंदगी के फरमे में से निकलता है, जैसे हमारी नमाज है हुज़ूर की नमाज की तरह उस फरमे में जाकर निकली है तो बारगाह खुदावंदी में कबूल है। अगर हमारा रोजा उसी तरह का है तो कबूल है, रोजे को कबूल होने से कोई रोक नहीं सकता, और जिंदगी के सारे काम ऐसे हैं तो फिर उस आदमी को कबूल होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर उसकी मुखालफत कर, लेकिन उसकी कबूलियत को कोई रोक नहीं सकता, उसके अमल को कोई नहीं रोक सकेगा, उसके अजर को कोई कम नहीं कर सकेगा। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अल्लाह की तरफ से मुंतखब जात को उतारा गया, आपने जब अपना काम शुरू किया तो पूरी दुनिया ने आपकी मुखालफत, सब मुखालिफ था, पूरा पक्का आपका मुखालिफ था, और जैसे जैसे आपकी बात बाहर गई तो बाहर वालों ने मुखालफत की, लेकिन चूंकि आपकी तरफ से अल्लाह की तरफ से आपकी वो जिंदगी और आपके वो अमान कबूल थे तो धीरे 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 वो सारे मुखालफत छट गए। ऐसे कयामत तक जो हुजूर वाले अरेबे पर आएगा, आपके नक्शे कदम पर खड़ा होगा, तो उसको सारी दुनिया की ताकत लगाकर उसको रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि अल्लाह की तारीफ से चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके के साथ अल्लाह की तारीफ, और आपके अलावा जितने तरीके हैं सब अल्लाह मर्दूद है, उसके साथ अल्लाह की तारीफ। जो हुजूर वाले तरीके पर जिंदगी गुजार रहा है वो ताईद खुदाबंदी के साथ, और उसको अल्लाह बढ़ा, अल्लाह को उसे बढ़ाना है, उसको आगे चलाना है, ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह उसको कबूल कर लेगा, अमल को भी कबूल कर लेगा, अमल करने वाली उस जात को भी अल्लाह कबूल करेगा उस अमल की वजह से, ये अमल अच्छा है। इसलिए हमारे इस काम में मश्क है, मश्क, नमाज की मश्क, रोजे की मश्क, कुरान की मश्क, सुन्नतों पर चलने की मश्क, वुजू करने की मश्क, सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करने की मश्क है, मुआशरती जिंदगी की एक मश्क है, इकराम की, अखलाक की, एहसान की, बड़ों की इज्जत करने की, छोटों पर शफ़क़त करने की, अपना माल अल्लाह के लिए खर्च करने की मश्क है, और उस मश्क में हमें हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना नमूना बनाना। हुजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए हमारी दावत में अल्लाह के हुक्मों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करने की दावत, अल्लाह के हुक्मों को किसी और के तरीके पर पूरा करने की दावत, अल्लाह के हुक्मों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करने की दावत, क्योंकि अल्लाह के वहां काबिल कबूल तरीका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। एक मश्क है इसके कदम कदम पर, और रोजाना मश्क है ईमान की, ईमानियान को बोलकर, ईमान की दावत देकर, ईमान के हलकों में बैठकर, ईमान का मुजाकरा करके, और ईमान से मुतालिक हदीसें सुनकर, घंटों भर इसकी मश्क है कि रोजाना ईमान में तरक्की हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीकों पर कामयाबी के कलिमात को बोलकर सुनकर, उस लाइन की हदीसें सुनकर, रोजाना हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीकों की असमत और मोहब्बत दिल के अंदर बिठानी है, जब हमारी जिंदगी का हर हर काम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर हो, चलना, गिरना, उठना, बैठना, सोना, जागना, घर में दाखिल होना, निकलना, अगर नहीं है तो उसकी मश्क शुरू कर देंगे। मस्जिद में दाखिल होते हुए फौरन इस्तेंजार होगा कि दाना पेड़ या वाया पेड़, अगर वाया पेड़ से दाखिल हो गए फौरन वापस निकाल देंगे दाना ना पेड़। वुजू करते हुए पहले हाथ धोने की सुन्नत है, वुजू किबलारू बैठकर करना सुन्नत है, उसकी कोशिश करेगा, वुजू से पहले की दुआ क्या कोशिश कर लेगा, तो उसकी जो सुन्नत है के जो आदाब है, इसलिए कि आदाब से इब्तिदा होती, आदाब से इब्तिदा होती, हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके में इंतहा तक पहुंचने के लिए इब्तिदा आदाब से, कि हर चीज के आदाब है मुस्तहबात, उसके अहतमाम से सुन्नतों के अहतमाम की तौफीक होती, और जहां मुस्तहबात की रियायत नहीं हुई वो सुन्नत की आजमत इतनी नहीं रहती, और जब सुन्नत की आसमत दिल से निकल गई तो फिर वाजिबात की आसमत बाकी रह गई, और आदमी फिर बड़ी बड़ी चीजों को, वाजिबात और फर्ज तक की चीजों को लावाली पर लापरवाही में छोड़ देता है, लावाली पर लापरवाही, लापरवाही में नमाज छोड़ दी, हालांकि फर्ज है नमाज, तो इसलिए हमारी कोशिश होगी, हमारी एक मश्क होगी कि हम हर हर काम को हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके पर करने की कोशिश करेंगे, उसको सीखेंगे, पैदाइश से कोई सीखा हुआ नहीं आया, उसको सीखेंगे, पैदाइश से खाना खाना सीख कर नहीं आया, पैदाइश से आदमी पीना सीख कर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे खाना सीखा, पीना सीखा, चलना सीखा, चबाना सीखा, बात करना सीखा, ऐसे ही जिंदगी में जितने काम हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके पर करने के मश्क जब करेंगे तो धीरे धीरे उसकी मश्क हो जाएगी, और उसको बतकल्लुफ करना होगा, आएगा नहीं, अभी तबीयत भी चल नहीं रही और हो नहीं रहा, आदमी करना चाह रहा हो गया, एक आदमी नया नया पगड़ी बांधता है, उसको आता नहीं पगड़ी बांधना, तो सीखता है, दूसरे पगड़ी बांध ले वापस, फिर आता है और बांधता है, टेढ़ी हो जाती है, फिर सीधी करता है, फिर उस पगड़ी को ठीक करता है, फिर एक उत्तर तक वो मशक करता है, उस पर ठीक पगड़ी बांध आ जाता है। अब वो आदमी वैसे ही ना आईना है, ना कोई आदमी है, सीधा रुमाल उठा है, रुमाल भी उठ करके पगड़ी पर उसको मशक हो गए। ऐसे सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की मशक नहीं है, तो बतकल्लुफ करना होगा, वही से तय करके वजू से आ रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक पढ़नी। अब अगर आदमी अच्छी तरह से याद होता है, अब आंखों पर नजर है कि भाई अंधेरियां पिछले की तरफ हो रही, इधर उधर क्या रही, उसको इस्तेजार ज्ञान के साथ, इत्मीनान के साथ अंधेरियों को कबरे की तरफ करके फिर अल्लाह अकबर कहकर आपके नाम के नीचे हाथ बांध देगा, यही सुन्नत है हमारे नजर। और फिर आदमी हाथों को अच्छी तरह बांध कर इस्तेजार करेगा कि सुन्नत के मुताबिक बांधे, फिर मसरूर किरात पढ़ेगा और फिर सुन्नत के मुताबिक रुकू करके ध्यान करेगा कि बराबर है नहीं, सर कुछ बराबर है नहीं है, तो वो ध्यान करके उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, पैरों के उंगले मिलने की तरफ रुकू में हाथ खुले हुए हैं, घुटने पकड़े हैं, ऐसे ही टेक लगाया है, सारी चीजों का ध्यान करेगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन, महीना, दो महीने, छह महीने, अब अच्छी मशक हो जाएगी, तो वो नमाज सुन्नत के मुताबिक। जब सुन्नत के मुताबिक हो गई तो फिर बारगाह खुदाबंदी में कबूल होने से इस नमाज को कोई तबाह होने से सख्त बारिश होगी तब भी ऊपर चली जाएगी और बहुत ज्यादा बादल होंगे तब भी चले, इस नमाज को कोई रोक नहीं। और अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं तो हदीस पाक में आता है कि बाज़ा नमाजों की नमाज उसको मुंह पर मार दी जाती और वो नमाज बदुआ देती हुई जाती है कि जैसे उन्होंने मुझे बर्बाद किया अल्लाह ने भी बर्बाद किया, अल्लाह हम सबकी इबादत फरमाए। इसलिए इस्तेहज़ार के साथ तकल्लुफ मश्क करनी है, ईमान के बाद दूसरी मश्क हमारी नमाज है, नमाज की प्रैक्टिस करें और हर नमाज में ध्यान पैदा करें। इसलिए नमाज के फजाइल को ध्यान से सुनना कि इस पर क्या मिलने वाला है, तकबीर उमरा करके आ जाए फिर आपके लापरवाही में तकबीर उमरा नहीं छोड़े, घर से तो निकल रहे ऐसा लेकिन कोई दोस्त मिल गया तो खड़ा हो गया, ये लापरवाही, और मस्जिद आया तो इमाम हो चुकी, तो कितने मामूली काम में आदमी ने इतना बड़ा अजर खो दिया कि तकबीर उल्ला के सवाब से महरूम हो गया, मामूली सी वजह से आपके दूसरे सब पे चला गया, कोई वजह नहीं, पहले से आया हुआ था मस्जिद लेकिन चौथी सब में सुन्नत की रकात आती, हालांकि पहली सब का अजर पाने के लिए आदमी को पहली सब में जगह बना लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान जब हमारे अंदर होगा कि मुझे पहली सब का अजर मिलेगा अगर पहली सब में पढ़ूंगा और तकबीर उला के साथ इमाम के साथ तकबीर कहकर उनके साथ होने का मुस्तकिल अजर होगा और इमाम की दाहिनी तरफ खड़ा रहूंगा तो उसका मुस्तकिल अजर होगा, इमाम जब सलाम दे रहे हैं तो सबसे पहले रहमत की दुआ मेरे तरफ आएगी, फरिश्तों की आमीन उसको मिलेगी, फरिश्तों की दुआ मिलेगी, नेक जिन्नात की दुआ मिलेगी, ये सारा अजर होगा। आदमी ध्यान के साथ आगे आकर पहले सब की जगह बना और अब इत्मीनान के साथ खुशो खुदो वाली नमाज का क्या आ जाए, नमाज का मुस्तकिल बाप वाला रशियत वाले ने खुशो खुदो के साथ नमाज पढ़ने के बताए, ध्यान के साथ वो आदमी नमाज की खुशी कर और पहली नमाज के मुकाबले में दूसरी नमाज, जैसे अभी मगरिब पढ़ी तो मगरिब के मुकाबले में हमारी ईशा की नमाज मगरिब से ज्यादा अच्छी हो, फिर ईशा के बाद फजर पढ़ेंगे तो फजर ईशा से ज्यादा अच्छी हो और कल के जोर सुबह की फजर के मुकाबले में और अच्छी हो, कैफियत पैदा हो। सबसे पहले हमारे जिम्मे कि नमाज के जाहिर को हम ठीक कर दें, सुकून से खड़ा रहना, हर रुकन में कहां देखना, कैसे खड़ा रहना, कैसे रुकू करना, वो हमारे कंट्रोल में, आदमी के कंट्रोल इख्तियार, दिल अभी इख्तियार में नहीं है, अभी हमारी दिल पर इतनी मेहनत नहीं है तो हमारे इख्तियार में रहे, वो बहुत ज्यादा आवारा, बहुत आवारा, पता नहीं कहां से कहां चला जाता है, कैसी कैसी बदगुमानियां लोगों से कर देता है, बहुत आवारा है, क्योंकि वो कंट्रोल बेकाबू, जैसे किसी का बच्चा आवारा हो जाता है तो बाप बेचारा चाहता है कि वही बन के रहे लेकिन वो तो आवारा हो चुका है, तो बाप जितनी उसको नसीहत देता है उसको पूरी, ऐसे जब दिल इस तरह हमारा हो जाता है बावजूद कोशिश के भी जल्दी आता था, लेकिन जिस्म तो हमारे कंट्रोल में, आदमी अपने जिस्म की हरकतों को अपने काबू से ठीक कर ले तो फिर धीरे 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 उसके कल्ब में भी इख्तियार की सूरत पैदा होगी, क्योंकि आदमी अपने जाहिर का मुकल्लफ फिर अल्लाह ताला बातिन को बना देगा, बातिन फिर उनको खुदा सही करेगा। ताकि आदमी मेहनत में लग गया और दुआ करवाएंगे अल्लाह मेरी नमाज मेरे दिल में इसका एहसास पैदा कर, नमाज में मुझे हुजूरी हासिल कर और मेरी इबादतों में सिफत एहसान पैदा कर दे अल्लाह, तो फिर धीरे 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 सिफत एहसान की कैफियत की तरह कल्ब लौटेगा, दिल लौटेगा और नमाज में ध्यान बनेगा। फिर जैसे रकात बांधी तो दुनिया का तस्वर ख्याल कम हो जाए, इतना गुनाहों का तस्वर खत्म होगा, ख्याल कम हो जाए और धीरे 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 ऐसी कैफियत नसीब होगी कि रकात बांधते ही आदमी अल्लाह के हुक्म हो जाए, फिर लंबी नमाज की तौफीक होगी, लंबी नमाज की तौफीक, लंबे रुकू की, लंबे सजदे की, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा और सहाबा के बाद तबीईन, तबे तबीईन और उलमा की नमाजों के किस्से हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल की किताबों में नकल किए, और उनकी नमाज में रग़बत और शौक और नमाज में उनका ध्यान और इस्तेहज़ार कि दुनिया माफ़ीहा से बेखबर होकर एक अल्लाह की ज़ात में मशगूल अल्लाह अकबर कहकर ऐसे गुम हैं, ऐसे गुम हैं कि वहाँ आग लगकर बच्चा जलने को करीब है, मोहल्ले वाले जमा हो गए और आग बुझाई, बच्चे को वहां से निकाला, लेकिन उनको पता नहीं क्या हो रहा। नमाज के बाद पूछा तो बोले हाँ कुछ आवाज क्या आ रही है, आवाज जैसे हमारा आदमी सो जाता है कैसा भी गायब हो जाता है, सो गया उसका पूरा पॉकेट पर मार जाता है, उसके तकिए के नीचे से आदमी सामान निकाल के चोर चला जाता है, पता ही नहीं, मस्त है अपनी नींद में अच्छी मश्क कर रखी है सोने को, बेहतरीन मश्क हो गई सोने को, आदमी ऐसा गुम है पूरा घर को साफ करके चला जाता है, वो अंदर ही होता है और इसको पता नहीं होता। जैसे नींद में गुम है ऐसे अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह को कैफियत नसीब करता है कि अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के ध्यान में, कुरान की तिलावत में और नमाज में ऐसे गुम है कि दुनिया माफ़ीहा से बेखबर, एक अल्लाह का शुक्र मोहब्बत की कैफियत है। आजकल मोबाइल वाले बहुत से ऐसे मिलते हैं, मोबाइल में फोन थे और कोई साइज का पर्स रखा हुआ था निकाल के चला, पता ही नहीं चला इसको, मोबाइल में फोन थी औरत और उसका बच्चा को लेके चला गया, रेलवे स्टेशन पर किसी जगह बैठकर मोबाइल में लगी हुई थी, पास को दिखाया वो बच्चा उसका था तो उठा के चला गया, इसको पता ही नहीं चला और उसका बच्चा को ले गया, ऐसी मजबूर हो गई कि हर आदमी को अल्लाह ने ध्यान की सिफत दी है, ध्यान की, लेकिन वो सिफत गलत जगह इस्तेमाल हो रही, कोई खेल में इस्तेमाल कर रहा है इसको, कोई लहूलाई में इस्तेमाल कर रहा है, कोई दूसरे गुनाहों के कामों में इस्तेमाल कर रहा है, खेल पर बैठने वाले 8-8 घंटे ऐसे मस्त होते हैं उनको कुछ पता नहीं अपने जॉब में लगे हुए, ऐसे जॉब और ये ध्यान अल्लाह ने अपने हर बंदे को दिया, मेहनत करके उस ध्यान को काबू में लाना कि नमाज में ध्यान पैदा हो और ऐसे नमाज नसीब हो, इसके लिए मश्क है कि नमाज से मश्क, फजाइल के हलकों में उन फजाइल को सुनकर उसका इस्तेहजार करें कि हर नमाज से पहले कि फर्ज नमाज का क्या अजर है, तकबीर उला के साथ पढ़ने का क्या अजर है, पहली सब का क्या सवाब है, खुशू खुदू का क्या सवाब है, इमाम के साथ आमीन कहने पर क्या अजर है, इमाम के पीछे ध्यान से सुनने पर क्या सवाब है, इसका फर्ज नमाज का क्या सवाब है, ऐसे जो अजर उसके फजाइल हैं फजाइल के इस्तेहजार पर ही नसीब हो जाता है। ये फजाइल का इलाज है जो हमारे लिए टॉनिक है, टॉनिक है अंदर से फजाइल का इलाज, जैसे टॉनिक से पावर मिलता है, जो टॉनिक खाते हैं पीते हैं उससे पावर हासिल होता है, पावर नसीब होता है, ऐसे ये फजाइल का इलाज टॉनिक, घंटों भर अपने आप को विभन इस इल्म से अपने आप को मुस्तबनी न समझे, मुस्तबनी नहीं हो सकते वहां पर, अल्लाह ताला ने इल्म उतारा है फजाइल का, कुरान भी फजाइल से भरा हुआ, कुरान भी फजाइल से भरा हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस में लाखों हदीस से फजाइल की, फजाइल का इल्म हमारा टॉनिक, फिर अमल की सेहत के लिए मसाइल, अमल चाहे आदमी के पास कितना सारे फजाइल इस्तेआजाज है, लेकिन जहालत के साथ नमाज रुको सजदे ठीक नहीं है, क़िरात सही नहीं है, तजवीद ठीक नहीं है, तो चाहे कितने ध्यान के साथ आपकी नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन बारगाह खुदावंदी में वो अमल मसाइल के एतबार से सही न होने की वजह से काबिल कबूल नहीं होता। उसके मसाइल का इल्म लेना है उलमा से, और हर चीज का इल्म, इबादत का, मामलात का, मुआशरत का, अखलाक का, और हम जिस शोबे से मुतालिक हैं, कोई जिंदगी में सियासत से, सियासत के शोबे से मुतालिक हैं, वो सियासत का इल्म हासिल करके फिर सियासत देगा, सियासत का इल्म हासिल करे, ताजिर है तो तिजारत का इल्म हासिल करे, फिर क्या तिजारत का इल्म है, सारे हैं खेड़ हैं किसान हैं तो किसानी का इल्म लेकर फिर वहां जाए, और फिर शादी कर रहा है तो शादी का इल्म ले फिर शादी करे, वरना जहालत के साथ निकाह करेगा, वो निकाह खैर का जरिया नहीं बनेगा, वो निकाह तस्कीन कल्ब का जरिया नहीं बनेगा, मुसीबत बनेगा, वो निकाह मुसीबत बन जाएगा उसमें, क्योंकि उसने उसको तरीके से नहीं दिया, तिजारत उसके लिए खैर का जरिया नहीं बनेगी, वो तिजारत उसके लिए शर का जरिया बन जाएगा, हलाकत का जरिया बन जाएगा। इसलिए इल्म लेगा आदमी फजाइल के इल्म के साथ मसाइल का इल्म, और मसाइल के इल्म के साथ आदमी दुनिया में अपने शौकों की जिंदगी गुजारेगा, अपनी दुकान पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ, धोखा नहीं, बबन नहीं, झूठ नहीं, सूद नहीं, वादा खिलाफी नहीं, इन सारी चीजों से पाक हो, चाहे पूरा मार्केट ये करता, पूरा मार्केट ऐसा ही कर रहा, धोखा दे रहा है और खिलाफ वादा खिलाफी कर रहा है, सूदी काम कर रहा है, लेकिन एक मुसलमान है, वो मुसलमान उस बाजार में जाकर, उस बाजार में जाकर सच्चाई के साथ तिजारत करेगा, अमानतदारी के साथ तिजारत करेगा, उस तिजारत में अल्लाह बरकत डालेगा, बरकत आसमान से आए, कहाँ से आए, अल्लाह के खजाने से आए, फिर इधर उधर नहीं देखना होगा, साहिद के घर के पास भी नहीं देखेगा, बल्कि आदमी फिर अपनी चीज का है बताएगा, घर ताजिर के जिम्मे जो है बेचने वाले के जिम्मे, वो भी बताना है ऐप बताने का, बेचने वाला नहीं होगा, वो भी तो सामने वाला देखेगा कि फर्स्ट क्वालिटी सेकंड क्वालिटी, लेकिन कौन सी क्वालिटी में क्या खामी होगा बताएगा, बेचने वाला बताएगा, इसीलिए तो कहा ने खरीदने वाले को एक इख्तियार दिया है, तैयार है ऐप मसाइल इसके तफसील से, कि कोई आदमी कोई चीज खरीद कर ले गया और वो चीज में ऐप था, उसको खरीद के लोग पता नहीं था, खरीद के उसको मालूम था, बेचने वाले ने कह दिया कि भाई ये बकरी 500 ग्राम में दे दी, 500 ग्राम बोल ले गया, अब घर जाकर उसका निकाला 500 निकलता है, लेकिन उसको किलो चाहिए था, ये वापस आने देने के लिए आगे नहीं बैठे, आप सौदा हो गया, 500 हमने कहा था 500 तो दे रही, लेकिन इसको ये था कि बकरी 1 किलो दूध दे, और सामने वाले ने उसको इसमें काम में हमने 1 किलो दूध वाली बकरी दे उसने दे दी, चुपचाप कहा कुछ दे, उससे जाकर निकाला एक मोटर वाला दो मोटर, लेकिन 500 निकल रहा है, तो इस आदमी को इख्तियार है वापस जाकर उसको वापस कर दे और अपना पैसा वापस, क्योंकि वो जो चलता था वो चीज उसको मिली, इसके मसाइल तफसील से, तो ताजदार वो कुछ बेचने वाले के सिर में तो क्या है, अगर उसकी चीज में ऐब है तो वो बता, और उसमें अल्लाह से बरकत मांगे, ये चीज है ऐब वाली है, ऐप वाली ऐप बताकर देखे उसमें चार आना फायदा हुआ है, उसमें बरकत है, उसमें बरकत है, और सामने वाला कुछ होकर ले जाए दुआ देता हुआ जाए, इस तिजारत से मोहब्बत पैदा हो, भाई ऐप पता कर दिया जो था वो कहा उसे, इससे मोहब्बत पैदा, और अगर धोखा हुआ तो सबसे पहले चीज के धोखा, उदू कह रहा है कि जो धोखा दे वो हमने से नहीं, इतना बड़ा प्रमाण है जो धोखा दे वो हमने से नहीं, दूसरा सामने वाला लेकर चला गया लेकिन गांठ पार के जाए कहीं तक कभी नाम नहीं गई, और पूरे मार्केट में कैनवासिंग करेगा कि मैं गलत बात देता बहुत बुरा आदमी है, चाहे कितना जो कुछ करता हो लेकिन व्यापार व्यवहार इसका अच्छा आदमी बदनाम हो, 500 रुपये 1000 रुपये नफे के खातिर आदमी बदनाम हो, उसका आयब है उसको बताना, ये मसाइल हैं तिजारत के, काश्तकारी के, मुलाजमत के, उसके मसाइल हैं, जैसे نام بول میں کمی ہوتی ہے، جیسے ملازمت وقت ہوتا ہے، بار ٹیسٹ کے مسائل، یار کے مسائل کے کوشش میں اپنا کام کرے گا، یہ مطلوب ہے اس دعوت سے ہمارا، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے اس طرح سے، علم کی رغبت پیدا ہو کر ہمارا ہر عمل صحیح ہو جائے، نماز بھی، روزہ بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، عبادت بھی، اور معاملات بھی، معاشرت کا دین، معاشرت جو زبردست بنیاد ہے، معاشرت اس پر ساری عمارت تعمیر ہوتی ہے، آگے نیچے ایمان ہے، عبادتیں ہیں، پھر انسانی معاشرہ ہے، قرآن نے لکھنا ایمان و عبادات کے راستے سے آئے بھی نیکیاں ہو، اور دین وہ معاشرت اور معاملات کے راستے سے چلا جاتا ہے، حدیث ہے وہ من المفلس، حضور علیہ السلام نے پوچھا مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا جس کے پاس دینار و درہم نہیں، حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو قیامت کے دن بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے، بہت پہاڑ کے برابر، اور کسی کا معمولی دبا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی زمین دبا دی، وہ سب لوگ لے گئے، اور آدمی کے ساری ہر پہاڑ برابر نیکیاں جو ہے پھر وہ اکیلا کھڑا رہ جائے، اور دین لینے والے بھی کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ان کا ان کے گناہ اس پر ڈال، ان کے گناہ لے کر یہ آدمی مفلس بن کے چلا جائے، اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے، اس لیے اپنی زندگی کے رخ کو اس زاویے سے وہی آدمی صحیح کر پائے گا جو یہ سمجھے گا کبھی میرے اندر کمی ہو، میری معاشرت میں کمی، اور مجھے اس کو ٹھیک کرنا دھیرے، جسم میں ذات تک کھوٹ آتی ہے، آدمی کا ہاتھ ٹوٹا، آدمی اس کمی کو محسوس کرتا ہے تو علاج کرا، پٹا دو مہینے کا بدوا دیتا، دو مہینے کے پٹے کے بعد ہاتھ پاؤں کو ٹوٹتا نہیں تو پھر پریکٹس کرتا ہے، انگلیاں ٹھیک سے نہیں تو اس کو ورکنگ کرا آخر تک کوشش کرتا ہے تاکہ میری انگلیاں ٹھیک ہو جائیں، ایسے ہمارے دین کا جو نقص ہے اس کا احساس ہمیں خود کرنا ہوگا، اور وہ احساس ایمان کی روشنی میں ہوگا، جیسے جیسے ہمارا ایمان بڑھے گا ویسے ہمیں ہمارے اعمال کم نظر آئیں گے، اور جتنے عمل ہیں ان عملوں میں نقص نظر آئے گا، یہ ایمان کی علامت کہ ایمان والے کو اپنا بڑا سے بڑا عمل چھوٹا دکھتا ہے، بڑا سے بڑا عمل، اور ایمان والے کو اپنے اچھے سے اچھے عمل میں نقص نظر آتا ہے، یہی تو وجہ تھی حنظلہ رضی اللہ عنہ کا نام ہوا حنظلہ، کیا وجہ ہے، حضور کی صحبت میں ہے، پکے صحابی ہیں، اور میرا نام ہوا حنظلہ، ایمان بہت اوپر چلا گیا تھا، اس اوپر کے ایمان میں صاف آئینے میں سب نظر آتا تھا کہ معمولی کیفیت کا فرق حضور کی مجلس میں آخرت کا استعزاء اور گھر کے ماحول میں بھی بچوں کی محبت اور رغبت کی زیادتی اتنی سی چیز تھی جو ایک انسان ہونے کے ناطے جائز تھی بلکہ مطلوب و محبوب چیز تھی، لیکن وہ ایمان کے اس معیار سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایسا لگا کہ نکاح، جتنا ایمان بڑھے گا اتنا عمل کم دکھے گا، جتنا ایمان کا پارا اوپر جائے گا آدمی کو اپنے عیب نظر آئے گا، جتنا ایمان بنتا جائے گا اتنا اپنی ذات نیچے آئے گا، توازو اتنی بڑھ جائے گی، اتنی توازو بڑھے گی، جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ایمان والے ہیں، سب سے بڑے متواضع ہیں، اتنی توازو بڑھ جائے گی، جتنا ایمان اوپر جائے گا اتنا چھوٹا سا گناہ بھی آدمی کو بہت بڑا لگے گا، اگر شیخ نے نقل کیا ہے فضائل میں کہ ایمان والے چھوٹا سا گناہ اگر اس نے کر لیا ہے تو اس کو ایسا لگے گا جیسے پہاڑ گر رہا ہے اس کو، اور منافق گناہ پر گناہ کرتا جائے گا اور ایسا لگے گا جیسے مکی بیٹھی دوڑا، جب ایمان بنے گا تو ہمارے نقائص ہمارے سامنے ہیں، پھر آدمی کو کسی اور کی برائی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس کو کہا پوچھ سکتا، ایک آدمی خود ہی اتنا پیٹ میں درد ہے اس کو کہ وہ تو روتا جا رہا ہے، اس کو کیا پتا کس کا سر درد کر رہا ہے، کس کو بخار آ رہا ہے، وہ تو خود ہی اتنا بیمار ہے کہ وہ تو ہاسپٹل میں لے جا رہے ہیں دوسرے 50 پیشنٹوں کا، اس کو تو پتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے درد میں ڈوب رہا ہے، وہ اپنے ہی درد میں ڈوب رہا ہے، ایسے جب آدمی کے سامنے اپنے نفائس کھلیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے سو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا احساس صحیح ہوگا سر، اور دوسروں کے نفائس پر بھی نظر دی جائے گی، پھر اوروں کی تو خوبیاں ہی دیکھیں گے، جیسے آدمی ہوتا ہے وہ آدمی آپ کا سامنے بیٹھے گا بہت زیادہ بخار ہے اور ایک پیٹ میں بھی درد ہو گیا، اور سامنے والا آ کر کے بھائی میں 15 دن پہلے بہت بار کوئی 15 دن پہلے بیمار تھا، ابھی تو بہت اچھے ہو، میں ابھی تم سے زیادہ بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، ایسے سامنے گنہ گار بھی دیکھے گا تو آدمی کہے گا نہیں بھائی وہ تو ایمان والا ہے، اور پتا نہیں اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو، میں گنہ گار، اس کا क्या ताल्लुक अल्लाह से होने का होगा? सामने आप शराबी आदमी होगा तब भी आदमी ईमान अच्छा करेगा, ईमान वाला है, कल का तौबा करेगा, ईमान अच्छा करेगा, तो बहुत बड़ी नियामत है उस लिज्जत, बहुत बड़ी है। और उसकी तालीम है उम्मत को उस लिज्जत पैदा करे सबसे, उस लिज्जत के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं, किसी भी किसी से भी उस लिज्जत कर सकते हैं। जैसे इश्क के लिए आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, काली से आदमी मोहब्बत कर लेते हैं, लोग पूछे भाई तू मेरे मोहब्बत हो गई क्या होता ही होता दुनिया, ऐसे हुस्न जन के लिए कोई दलील नहीं कैसा भी आदमी आप उससे हुस्न जन हाँ मामला करेगा तो मामला अपनी तरफ से होगा, मामला हुस्न जन से नहीं होता। अरे तो आप रब अल्लाह का कॉल है कहाँ शुरू कर दिया वहाँ वो कहाँ वालों का रजाने कि मामला को हर एक से अजनबी की तरह का अजनबी आता जानते नहीं फर्जा लेने आया है आप इस तरह तो क्या उसको पहचानते नहीं कि फलाने का बेटा है फलाने की बेटी है फलाने का नौकर है आप उसको जानते नहीं उसी को पहचान दो इस तरह फर्जा दो आप जितना जानते हो उस हिसाब से मामला करो ताकि बाद में जाकर किसी को शिकायत करने ना जाना किसी को कहना ना पड़े फला देने से जिस वक्त फर्जा ले रहे हैं लेकिन अमूमी हालात में उस लेसन की तालीम हर एक से अच्छा गुमान गुनहगार से गुनहगार मुसलमान है उससे भी अच्छा गुमान इस वजह से करेंगे क्या पता उसका अंजाम अच्छा हो। हम क्या जानते हैं हिदायत अल्लाह के हाथ में, बहुत सब को अल्लाह ने मौत के मुंह पर हिदायत दी, मौत के मुंह पर हिदायत दी बिल्कुल मौत आई उस वक्त हिदायत, एक नमाज भी पढ़ी उन्होंने जिंदगी, एक रोजा नहीं रखा जिंदगी जिसको हुजूर में गुजार जिंदगी जिसको हुजूर में गुजार। किसी बुजुर्ग का किस्सा भी पढ़ा था कि उनके उनके मुतालिकीन में औरत थी उसका बेटा मासिक वाजिब था उस बेटे का इंतकाल हो होने से परे उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि फला हुजूर से तुम्हारा ताल्लुक है तुम उनसे जाकर मेरे नमाज जनाजा की दरख्वास्त करो जो मेरी नमाज पढ़ा। तो उनकी माँ ने कहा बेटा तेरी जिंदगी की हैसियत फिर भी कहता है वो जाती हूँ। वो बुजुर्ग के पास गई और बुजुर्ग से उन्होंने मुतालबा किया कि मेरा बेटा इस तरह से और जनाजे से पहले वो आ गए जनाजे से पहले आ गए। अच्छा जब उन्होंने इनकार कर दिया था बुजुर्ग ने उस बेटे ने कहा फिर तो तुम ऐसा करना जब मैं मर जाऊं किसी कोड़े पर मेरे लाश को फेंक दे किसी उकड़े पर ताकि लोग मुझे देखकर इबरत पकड़े कि मैंने जिंदगी गुनाहों में गुजारी आज कोई अल्लाह वाला मेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा उस बेटे ने कहा और फिर मर गया। और जब जनाजे का वक्त आया तो तशरीफ ले आए और उनके साथ उनके जितने लोग थे सब आए और जब उनका नाम सुना तो और लोग सब आ गए तो उनकी माँ ने उनसे मालूम कर पाए कि क्या वजह हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आज मैंने आज सोने 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 में ख्वाब देखा और अल्लाह ने मुझे इसी के जरिए से कहलवाया कि जाओ फला जगह मेरे वली का जनाजा पढ़ना है। फिर अल्लाह तालुम किए उनकी माँ से पूछा उनकी माँ ने कहा कि इसने मरते वक्त मुझे कहा था तुम मुझे जो है किसी कोड़े पर फेंक देना ताकि लोग मुझसे इबरत पकड़े कि ऐसी जिंदगी न गुजारे जैसे मैं तौबा कर ली इसने जिसकी तौबा हो उसके लिए हमेशा का दरवाजा खुला है कि तौबा ऐसी चीज है 70 साल के कुफ्र को अल्लाह माफ कर देता है एक तौबा से। तौबा जो है इस तो गुनाहों के जितना सारा ढेर हो अल्लाह पूरे ढेर को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे अच्छा गुमान बल्कि अपने से हम बेहतर समझे कि हर मुसलमान जिंदगी में देखते हैं रिश्तेदारियों का कैसा बयान किया रिश्तेदारी का कैसा पास और लिहाज किया और रिश्तेदारों पर हुजूर ने कैसे एहसान किए उनकी तरफ से ऐसी तकलीफें और ईजाएं मिली हैं बाज़ रिश्ते करीबी रिश्तेदारों की तरफ से लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन ईजाओं का इंतकाम तो बहुत दूर की बात है
उन निजाओं का तज़किरा भी नहीं किया। और जब अबू जहल का बेटा हजरत इकरिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान कबूल करने के लिए आ रहे हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं आ रहा हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब उसके सहाबा आपके पास बैठे थे, उसको कहा कि अबू जहल का बेटा इकरिमा इस्लाम कबूल करने के लिए से आ रहा है, जब इकरिमा आवे तो उसके बाद अबू जहल का कोई बुरा भला न कहना, इसलिए कि मुर्दों को बुरा भला कहने से जिंदा रिश्तेदारों को तकलीफ होगी। हालांकि अबू जहल ने हुज़ूर को कितनी तकलीफ पहुंचाई, दो बेटियों को तलाक दिलवाई इन्हीं लोगों ने मिलकर, और मक्के में क्या सितम ढाए थे उसका तज़किरा भी नहीं किया, और जब मौका आया तो आपने अपना दिल बढ़ा दिया और उन पर एहसान किया, उनकी नस्लों पर एहसान किया। हज़रत बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बेटी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जान है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाने वाले सहाबी इस्ता उनके ऊपर एहसान किया करते थे। जब वो मामला हुआ तो वो भी शरीक हो गए, लोगों के साथ हो गए, उन पर एहसान करते थे। जब ये सुना तो बड़ा सदमा हुआ जो और तय कर लिया कि अब मैं इन पर फर्ज नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की, वला यतलबुन फज़लन साथी अय वक़्तुल क़ुरबा, कि आप अहले फज़ल के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं, अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं है कि जो एहसान कर दे उस एहसान को रोक दे। रिश्तेदारी रिश्तेदारी अल्लाह ने रिश्तेदारी बनाई, उसका पास और लिहाज है, उनके साथ इकराम का मामला है, एहसान है और ताल्लुकात है। किसी हाल में ताल्लुक तोड़ने की गुंजाइश है, किसी हाल में बहुत ज्यादा नाराज अगर हो गई तो तीन दिन के मुद्दत थी कि तीन दिन में आपकी मामला ठीक कर दे, बहुत ज्यादा हाँ दीनी वजह, कोई दीनी वजह इसमें कुरान सुन्नत में जिसकी गुंजाइश होती है वो दीनी वजह होती है। आपकी अपने साथ की वजह से मुझे गाली दी, मुझे बदनाम कर दिया, मुझे ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, ये सारे वजूहात हमारे नफ्स की हर एक के साथ जोड़ने को कहा, हसिन मत करता जो तुम उसे तोड़े उसे जोड़ो, हसिन इला मत असा इलाय उसके साथ अच्छा करो जो तुम्हारे साथ बुरा करे। दिल बड़ा करने ईमान वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, जब ईमान का नूर अंदर आता है, ईमान का नूर तो दिल में वसतें आ जाती, समंदर से ज्यादा गहराई आती, समंदर से ज्यादा गहरा होता है। तो कोशिश हमारी हो अखलाक के साथ, इकराम और एहसान के साथ, बल्कि उससे ऊपर की इशार के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसियों के साथ इशार का मामला करें, अपना पेट काट कर उनको दे दें, अपनी जरूरत नौकर करके उनकी मुकदम कर दें, उनको पहले आगे बढ़ा दें। ये वस्म है ईमान का और ये तालीम है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, उसी की मशक है हमारे साथ। और ये सब कुछ है अल्लाह के लिए, ना नामवरी के लिए, ना महबा के लिए, लोग अच्छा कहें इसके लिए। अगर इनमें से कोई चीज है, कोई गरज अंदर शामिल है, उस गरज के हुसूल तक आदमी उस पर काफी रहे, लोग मामला करेंगे वहां तक आदमी माँ बाप पर फर्ज करेंगे। लेकिन किसी भाई ने किसी बहन ने कह दिया कि तो गरज के वास्ते खर्चा करता है, हमें होना अपने हुकूमतों को करें बच्चे आपको बढ़वा, ये अल्लाह के लिए नहीं करें। अगर अल्लाह के लिए होता तो वहां तक आदमी करें, लोग बाबा करें तब भी करें, जब बाबा ना करें तब भी करें, कि अल्लाह से करें, अल्लाह बहुत बड़ा, लोगों को जो कहना है कहें, अल्लाह बहुत बड़ा, एक अल्लाह के लिए नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते, रोजा अल्लाह के लिए, तिलावत अल्लाह के लिए, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए, गश्त करना अल्लाह के लिए, तीन दिन अल्लाह के लिए लगाए, चिल्ला चार महीना दावत के तकाजों पर एक अल्लाह के लिए करना, अल्लाह खुश हो जाए। इसलिए हर वक्त आदमी अच्छा ही करेगा क्योंकि अल्लाह के लिए उसमें कोई नक्स नहीं आने देगा, कमी नहीं आने देगा, झील लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने अमल में कमी इसमें नहीं आने देगा कि अल्लाह के लिए कर रहा है। और अल्लाह ने अच्छा मांगा है तो अल्लाह को अच्छा ही लेना है, अल्लाह को अच्छा से अच्छा देंगे। हर काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, कोई गर्ज नहीं, न नाम रुबूल न शोहरत, बल्कि उस तरह की अगर कोई चीज का वाहिमा दिल पर गुजरेगा फौरन उसका रद्द करेगा। दिल है जैसे जमीन है, जाफरान की खेती करो, जाफरान के साथ के नीचे उग जाता है, तो किसान लोग उसका इंतजाम हर वक्त करते हैं, ये नहीं कि मैं तुम्हारे दादा खेती कर दे तो सारा कंकल निकाला और मदद वो नहीं, तो वो तो हमारे मदद कंप्लीट करते थे, तो वो तो सारे रिया और शोहरत और अबराज के सारे जज्बों से पाक हो जाते थे, अब उनको तो जरूरत नहीं। कयामत तक जितनी खेती होगी उस खेती में नीचे से जरासीम भी आएंगे, और दूसरी चीजें भी होंगे, इबादत करते करते शोहरत या नूर तबलीग करते करते ये चीजें अंदर होती नहीं, वो अंदर पैदा, कोई आदमी अपने आप को पाकिस्तान नहीं कह सकता। ला तुज़क्कू अन्फुसकुम वो आलम बिमन इत्तक़ा, अल्लाह कह रहा है कि तुम अपने आप को पाक साफ ना करो, बल्कि आदमी तो अपने आप को गुनहगार करे, भाई बिल्कुल बोलेगा खूब करके, न करके ऐसा ना करे तो कुछ नहीं करता, हम कमजोर ऐसे नहीं कर पाते, आप बहुत करते हो इसलिए करो, बाजे लोग ऐसे करते हैं, उनको बहुत अल्लाह ने ताकत दी, बहुत करो कमजोर ये इसके ना, बल्कि आदमी खूब करके करेगा, करे देखो पाना अल्लाह इसको अच्छा करे, कोई तारीफ करेगा फौरन आप लोग तशरी की अलग अलग तारीफ के मैं तो मेरे सामने कोई तारीफ करेगा उसके मुंह में भी रखूंगा, इजाजत कर मना कर दिया कि आप ना आए, उन्होंने इशार करवाया किया तो कमाल के को मना कर दिया, कहा कि जब भी वो आते मेरी तारीफ करते और मुझे इतने पसंद नहीं करती कि मेरी कोई तारीफ करे, तो उन्होंने कहा कि अभी जान ने तारीफ नहीं करते, इजाजत नहीं, पढ़ने के पीछे बैठ कर इजाजत की क्या हाल हाल अहाल पूछा, और फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मकाम दिया है, आप उम्मीद जानते हैं की सभी चीज चौक जाए, आपको आपके घर में वही आती थी और आपके कमरे में हजूर की कबर मुबारक, ऐशा नाराज होगा मैं इसीलिए तुमको नहीं आती, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई तस्करा हो, मेरा कोई तस्करा हो, ऐसा इतिहास वो कितने सारे फजाइल और मनाकिब जमा थे आयशा के साथ, कितने मनाकिब जमा थे, लेकिन कैसा इतिहास कि खालिस अल्लाह के लिए कोई दाइया अंदर को बचे, कोई जज्बा अंदर का नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम, इसके लिए अपने आप को मिटाना पड़ता, आदमी अपने आप को मिटा दे, कोई तारीफ करे या न करे आपके काम करता है, कोई बुराई करे काम करता है, नफ्स के मुताबिक काम हो तब भी करता है, मुखलिस की अलामत यही है, इखलास वाले की अलामत है जो आदमी अपने अमल पर जमा रहेगा, चाहे वो अमल तबीयत के मुताबिक होगा या तबीयत के खिलाफ होगा, रमजान का रोजा गर्मियों में आएगा सर्दियों में आएगा, ये मुखलिस आदमी रोजा रखेगा, नमाज चाहे किसी हाल से टकरा रही हो मुखलिस आदमी अपनी नमाज पर कायम रहेगा, वो अपनी नमाज नहीं छोड़ेगा, ऐसे जिसका दीनी काम में आदमी लगा उसके मुकाबले में कितने सारे हालात आ जाए, उन हालात से टकरा कर आदमी उस काम पर जमा रहेगा, हाँ अगर कोई गलती कोई भूल हुई है उस भूल की आदमी इस्लाह करेगा, ठीक है मेरी भूल हो गई थी उस भूल को आदमी सुधार देगा ठीक कर लेगा, मेरा अल्लाह मेरे काम को पसंद करेगा, बाकी जो हालात होंगे उन हालात में आदमी जम जाएगा, जिसके हाल में छोड़ेगा किसी के बुरा कहने से भला कहने से असर नहीं होगा, किसी के बुरा कहने से किसी के भला कहने से कोई असर नहीं होगा, जैसे कोई आदमी तारीफ करता है वाह करता है तो खुशी होती है, ऐसे किसी की बुराई करने पर दिल को तकलीफ तो जरूर होती है, लेकिन इखलास वाला आदमी उस तकलीफ को महसूस नहीं करेगा और उस आदमी से भी ताल्लुक नहीं बिगाड़ेगा, मुमकिन है उनको हम सब पर तकलीफ पहुंची होगी, एक बहुत बड़े मदद काम के एक साथियों में से पुराने उलमा में से बड़े अल्लाह वाले इंतकाल हो गया, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास किसी ने उनकी बहुत सारी शिकायत और कफर दिखा पूरा करता है, हजरत अब्दुल्ला पढ़कर रख दिया अपने पास, उनसे भी ताल्लुक अच्छा था हजरत जी के, वो आएंगे ना मुझसे बात करेंगे, तो वो आए तो उन्होंने पूरा खत उनको दे दिया, हजरत जी के पढ़ में खत आया तो उन्होंने पूरा खत पढ़ा और खत पढ़ते 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 अपने में बहुत होने लगे एकदम से होने लगे, और फिर हजरत अब्दुल्ला की तरफ हजरत मेरे साथ में तब लिखा है मेरे मुताबिक आप वो आदमी अभी अच्छी तरह मुझे जानता है, मैं तो इससे भी ज्यादा बुरा हूँ जितना उसका निकाल, उसने तो बहुत थोड़ा लिखा था, इसने जो लिखा है वो तो बहुत थोड़ा है, मैं तो बहुत ही गंदा और इसीलिए फिर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे अच्छा कर, इसीलिए फिर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे अच्छा कर, ये है आदमी के इखलास के अलावा, इखलास के साथ आदमी करता है जैसे कि हिम्मत इखलास के साथ करता है, आदमी कोई इबादत कर रहा है तो इखलास के साथ ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, बाकी कोई सारे जज्बात सारे दाइये जो है अंदर से बाहर हो जावे, सिर्फ एक अल्लाह की रजा का जज्बा हो, जो हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा की जिंदगी के पल पल में निकला, इनकी کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور کوئی جذبہ نہیں اندر آیا تھا، اوپر چڑھ چکے ہیں دشمن کے، اس کے سینے پہ سوار اور اسے ٹھوک دیا تھا، بھائی کیوں ادھر گئے؟ میں نے خالص اللہ کے لیے میرے سینے پر چڑھا اور کوئی غرض نہیں تھا، حالانکہ ان کی لڑائی کوئی پراپرٹی کی لڑائی نہیں تھی، کوئی جاگیر کا جھگڑا نہیں، اللہ کے لیے معاملہ تھا، لیکن اس نے ٹھوکا تو کہا اب میرے دل میں ہو سکتا ہے کہ بات پیدا ہو جائے کہ میں نے اس کو میرے نفس کے خاطر مارا، اسی نے سوتر کر سکتا وہ آدمی بے سب ایسا ایسا داہیا پاک ہو جائے۔ اس کے لیے جب پروور کر کہ بار بار آدمی نکلے اور اپنے لیے دوسروں پر محنت کر کے ہم اپنے ساتھ اس لیے لے جاتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس طرح محنت کر کے بننے والے ہوں، کہ بار بار آدمی نکلے اللہ کے راستے میں جاوے اور قدم اٹھاوے، اور اسی لیے نکلتا ہے اور کوئی غرض نہیں، میں یہ جماعت کو تب جاؤں گا، فلاں علاقہ کو تب جاؤں گا، یہ ساتھی کو تب جاؤں گا، یہ سارے اغراض ہیں، یہ سارے اغراض ہیں۔ ٹھیک ہے ابتدا میں نیا آدمی ہے اس کو اس طرح سے بھائی چلو چلا جائے، نہیں جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی، دھیرے 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 اس کو ایک ڈراپ مل جائے گا، بیمار ہے کچھ بھی نہیں کھا رہا دلیا کھلا دیا، یہ کھاتا ہو جائے لیکن دلیا ہی زندگی بھر کھلانا ہے اس کو، اس کو تو گوشت روٹی کھلانی ہے لیکن نہیں کھا رہا تو دھیرے دھیرے ایسا کرتا ہو جائے۔ ویسے خالص اللہ کے راستے کی طرف بڑھ کر ان صفات کے حصول کے لیے جو ہماری محنت ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری اس محنت نے ان چھ نمبروں کو سیکھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا، کہ ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر ابتدا کرے ایمان و نماز سے اور ان چھ صفات کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے آپ کو ایک نمونہ بنا لے، ایک نمونہ بنا لے دوسروں کے لیے کہ بھائی یہ سب کر، یہ سب کر۔ صحابہ حضور علیہ السلام سے دین لے کر پھر دنیا کے ملکوں میں علاقوں میں خطوں میں گئے اور ان کو صحابہ نے کہا قرو مثلنا، کہ تم ہمارے جیسے ہو، وہ کیسا تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، وہ سارے اعمال لے کر جاتے تھے، لوگوں سے یہی کہتے تھے قرو مثلنا، ہمارے جیسے ہو، ہمارے جیسی نماز روزہ زکات حج معاملات معاشرت معاملات، یہ ایک نمونہ سیمپل ہم ہمارے سامنے آئے، جیسے دنیا کی کمپنیاں فیکٹریاں لوگ ان سے ڈیمانڈ کرتے تو سیمپل بھیج دیتے ہیں، بھائی ہمارا سیمپل ہے، آرڈر کو کتنا مال چاہیے 10,000 پیس چاہیے تو 10,000 پیس اسی طرح آدمی جو ہے تو دیکھتا ہے 10,000 میں سے 15 پیس ایسے نہیں ہے، اس کو نکال کر واپس کرتا ہے، بھائی یہ ریجیکٹ ہے، جیسا تم نے سیمپل بھیجا تھا یہ 15 ویسے نہیں ہے، باقی جو ہے باقی ہے کہ وہ ایسے ہیں ان کا بدل کے دوں، ایسے نمونے تیار ہوں ہمیں اور ہماری کوشش ہو کہ ہم ایسے نمونوں میں بن جائیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کی دعاؤں میں کہ اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہم اهدنا واهدی بنا، یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت، یہ ہمارے اندر کی خواہش ہو، یہ اندر کی طلب ہو، یہی اندر کے ارمان ہو، یہی اندر کے امیدیں ہوں، اسی کی دعائیں ہوں، جب یہ چیزیں زندگی میں آئے گی باقی جو دنیا کی ضروریات ہیں وہ اللہ آسانی سے آپ کے سے پوری کرے گا، روزیوں میں برکت ڈال دے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، آسمانی نصرتیں ہمارے ساتھ ہوگی، ایسے تھوڑے ہوں گے ایسے تھوڑے وہ زمین کی اکثریت پر غالب ہوں گے، ایسے تھوڑے زمین کی اکثریت پر اس لیے غالب ہوں گے کہ نصرت خداوندی کا دروازہ ان کے ساتھ کھلا ہوا، اس کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے لوگوں میں ہم بن جائیں اور اس کی عملی مشق کے لیے بار بار اللہ کے راستے میں نکلے قربانی دیں، اپنی دنیا کو اجاڑنا نہیں ہے، اجاڑنا مقصود نہیں ہے، دنیا کو اجاڑنا مقصود نہیں ہے، دنیا کو ایسے بنانا ہے جیسے حضور علیہ السلام اور صحابہ نے بنائی، وہی اس کا حق ہے، اس کے سے اس سے زیادہ اس کو ڈیکوریشن کرنا ایسا ہے جیسے کوئی بیت الخلا میں زوردار جھومر لٹکا دے اور وہاں آدمی بہت سارے یعنی شو پیس وہاں پر بیٹھ کر اس کو سوار رہا ہے، وہی ہوگا جس کا دماغ خراب ہوگا، اس کا دماغ خراب ہوگا، باقی بیت الخلا کو کیسا رکھنا چاہیے جتنی ضرورت ہے، ایسے دنیا ہماری جو ہے وہ اپنی جگہ اتنی رہے اور ہمارا دین سنور کے آئے، اعمال سنور کے آئے، اپنا اچھی ہو جائے اور آخرت کا استحضار قدم قدم پر باقی رہے، اس کے لیے بار بار اس دنیا کو چھوڑے اور دور دراز علاقوں میں اللہ کے راستے میں جا کر اپنی ذات پر بھی محنت کریں گے اور دنیا کے علاقوں میں جا کر انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی، ہمدردی اور خیرخواہی یہ ایمان والے کا خاص وصف ہے،
ईमान वाले का एहसास सस्ते हैं, ईमान वाला खैरखा होता है, खैरखा होता है, उसके दिल में खैरखाई होती है, अरे दुनियावी उमरवी हर अधिकार से खैरखाई होती है, दुनिया में चल फिर कर उम्मत की खैरखाई और अंदर के अपने सीने में लेकर मारे मारे फिरे, जैसे कोई आदमी अपनी कोई कीमती चीज गुम हो गई हो उसकी तलाश में कैसा मारा मारा फिरता है, किसी का अपनों का बेटा गुम हो गया है वो कैसा मारा मारा फिरता है, ऐसे हम हिदायत की तलाश में जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है दुनिया में मारे मारे अपनी जरूरत के लिए घर आएंगे, अपनी जरूरत के लिए कमाई करेंगे, अपनी जरूरत के लिए अपने बच्चों को वक्त देंगे, लेकिन हमारा अक्सर वक्त जो है वो हिदायत की तलाश में और उम्मत की हिदायत की फिक्र में जो है दुनिया के खितों और इलाकों में जाकर मारे मारे फिरेंगे, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा दुनिया के खितों में जाकर मारे मारे फिरे और दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको जरिया बनाकर दुनिया में हिदायत के हवाले करा दिया। इसके लिए आप खुदा से दुआ करें, सब भाई नियत करें इंशाल्लाह इस मुबारक मेहनत को अपने अंदर इन खूबियों को लेते हुए पूरे आलम में हिदायत की नियत से करने के लिए मौत के आखिरी सांस तक इंशाल्लाह तैयार है, तैयार है इंशाल्लाह और पर नियत करते हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसान भी फरमावे और अल्लाह हम सबको कबूल फरमावे।